Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Mishnari, Waiz number 805.
14th of December, year 2005, my Waiz in Al-Azhar Jamaat Khana of Karachi outside. Karachi. Ya Ali Madad. مومن جماعت مومن کون ہے پتہ ہے علی شاہ مولا فرمایا میرے سگے ہیں کیسا اچھا آپ کو درجہ دیا امام نے میں پہلی دفعہ اسے آیا ستگر کہہ رہے प्रेम भक्ति तोर गए वस अने अंतर लह लगाए सास युसास इमारा दिए सूरत ना जाए रे भाई काने सूरत ना जाए मौलाना हजर इमाम पे सलात दिन दरो ए दिन दरो ہم نے ابھی تک اس بات کی قدر نہیں کی کہ ہماری مٹھی میں کتنا قیمتی ہیرا ہے. یہ مذہب ہماری مٹھی میں ایک ہیرا ہے. ہمیں اگر معلوم ہوئے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے تو خدا کی قسم, پھر کہتا ہوں خدا کی قسم, آسمان کے فرشتے ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے رہے اور ہم خالی ارادہ کریں, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرو, ارادہ کرے وہ پورا ہوئے. مگر اس مذہب کے اندر ہم اس طرح سے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنے مذہب کی کوئی خبر نہیں. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں, کوئی بڑی عمر کی نانی کے دادی تھی اس کے پاس گئی, نانی ماں دادی ماں یہ لوگ بولتے ہیں پانی 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 ہے کیا, ہنسنے لگی کیونکہ بچیاں جو ہیں یہ بچیاں مچھلیاں پانی میں تو رہ رہی ہیں, پانی اس کے اندر ہے پانی اس کے باہر ہے, اور پھر بھی پوچھتی ہیں کہ پانی کیا ہے, کہتے ہو میرے ساتھ کنارے پہ لے گئی اور اپنی پوچھڑی کا ایک تھپڑا مارا, پانی کی بڑی سی لہر آئی اور یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہر باہر نکل گئی, تڑپنے لگی, پانی واپس آ گیا. اے نانی ماں اے دادی ماں ہم مر رہی ہیں ہم مر رہی ہیں, اس نے دوسرا تھپڑا مارا, پانی گیا ان کو لے آیا. کیا تھا, ہم تو مر گئے تھے, یہ پانی تھا. رکھی سر محاورت تمہیں आदरियो तमें काय न जानियो सत पंथ नो भेज रे हो मोमन भाई। ये गिनने वाला मोमन भाई आप नहीं, आप तो मोमने हैं, लेकिन आप मौलाना अली शाह माबा फरमाया आप मेरे सगे हो, आपका मर्तबा बड़ा है। आम मोमनों से आपका मर्तबा बड़ा है, आप मौला के सगे हो, तो मौला के सगे कैसे होने चाहिए? कभी आराम से बैठ के सोचो तो सही, मेरे अमाल कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, मैं छोटी उम्र से मोमनों को जानता हूं, मिला हूं, रहा हूं, और आम तौर पे जनरली जो मोमने हैं वो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, फिन फतूर नहीं करते, बड़े अच्छे हैं। लेकिन कलाम इमाम मुबीन में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने कहा है मोमनों में कचास है। मैं वो कहना नहीं चाहता क्योंकि वो अभी है ही नहीं, वो पुरानी बात थी, लेकिन मैं यहां आके आपके ईमान को जगाना चाहता हूं। जगाना चाहता हूं इसलिए कि आप लोग मौला के सगे हो। मैंने पूछा नहीं मुखी साहब से क्योंकि मैं लेट आया, आज एक मजलिस थी, उस मजलिस में मैं करीमाबाद रह गया। मैंने पूछा नहीं है कि सुबह की हाजिरी कैसी है। अब तो माशाल्लाह सारा जमात का नभारा हुआ है, सुबह कितने आते हैं इसके ऊपर मोमनपन है। हमारा ये जो इस्माइली तरीका है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ये निजारी तरीका इस्माइली मजहब का, इसमें मेन चीज जो है तो वो रूहानी इबादत है जो सुबह हम करते हैं। सुबह की इबादत हमारे ऊपर फर्ज है। आप में शुक्र मौला का बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास बैतुल ख्याल का बोल है, लेकिन ऐसा करके जरा सोचो तो इबादत करते हो। थोड़े से थोड़े से लोग हैं कि जो इबादत करते हैं, थोड़े से लोग हैं कि जो सीरियस है इस बाबत में कि हम सुबह की इबादत करें। ऐ मोमिना, मैं इस्माइली मजहब की ये साइड कि जो बैतुल ख्याल की साइड है, बैतुल ख्याल की आवाज नहीं करता, लेकिन बैतुल ख्याल की बाबत में मैं जगाना चाहता हूं। और यह चीज मुझे ऐसा फील होता है कि यह चीज में आप लोग कच्चे हो, सुबह की इबादत में कच्चे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, अतर लगाया होवे तो उसकी खुशबू आती है। कहने की जरूरत नहीं कि मैंने अतर लगाया है, जिसने अतर लगाया है वो जिधर से भी पास होगा खुशबू आती है। जमात खाने में आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुनियावी तरक्की सुन के देख के खुश हुआ हूं, और मैं बहुत खुश हूं आप में इत्तेफाक भी है, कामकाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से अच्छा है, लेकिन सुबह की इबादत में कच्चे हो, उठो इबादत करो। सुबह की जो इबादत है वो हमारी आखिरत का भत्ता है। एक चीज हमेशा हर इस्माइली को याद करनी चाहिए, जो मौला मुर्तजा अली फरमाया है कि मौत को याद करना इबादत है। मौला मुर्तजा अली कहते हैं कि मौत को याद करने से दिल में नूर पैदा होता है, और हमको मरना तो है, ये कुछ जरूरी नहीं कि बूढ़ा हो के ही आदमी मरेगा, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं, मगर मरना है, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना। जब इंसान के दिल के अंदर वैराग पैदा होता है, और वैराग पैदा कभी होता है जब इंसान सोचता है, और इंसान जब सोचता है तो खुदा उसकी मदद करता है, उसको सोच विचार की शक्ति देता है। एक मशहूर हकीकत हमारे ज्ञानों में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक मशहूर हिकायत है, सिद्धार्थ एक प्रिंस था। जब वो 17-18 साल का हुआ तो उसका बाप जो राजा था उसने इसको घोड़े पे बिठाया, प्राइम मिनिस्टर साथ दिया, लश्कर दिया कि जितने भी राजा के गांव हैं सब घूम के आवे। सिद्धार्थ बाहर निकला, शाही दबदबा था, एक जगह घोड़े को अटकना पड़ा, एक जनाजा निकल रहा था, कोई रास्ता नहीं था, अटकना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर को पूछा क्या बात है, कहते सरकार एक आदमी मर गया है, उसकी ठाठरी निकली है, मर गया क्या है, मर गया, उसको पता नहीं था अब तक के मौत क्या है, सब मर गया है, लेकिन क्या है, मर गया नहीं, मीन्स क्या मतलब। उसको कहते आओ इधर, उसको नीचे उतारा, मुंह खोल के कहा देखो ये आदमी है ना, ये मर गया है। उसको बोला उठ, तो नहीं उठा, कहते ये नहीं उठेगा, क्यों, इसके अंदर कोई एक चीज थी कि वो निकल गई, फिर ये क्या होगा, इसको जला देंगे। 18 बरस का लड़का, फर्स्ट टाइम पहली दफा उसने एक मैयत देखी, पहली दफा ये सुना कि ये अभी कभी नहीं उठेगा, पहली दफा ये सुना कि अंदर से कोई चीज निकल गई इसलिए ये कभी नहीं उठेगा, और ये भी सुना कि इसको आग में जला देंगे। बहुत देर खड़ा रहा, उसको बोला चलो वापस चले, कि आगे बहुत जाना है सर, वापस चलो। घर वापस आ गया, दरवाजा बंद करके सोच में पड़ा, लेकिन रास्ते में मिनिस्टर को पूछता रहा कि ऐसा सबके साथ होगा, कहते सबके साथ, तेरे साथ होगा, कहते हाँ, मेरे बाप के साथ होगा, हाँ, मेरे साथ भी होगा, होगा। ओह, तो ये अंजाम है, ये रिजल्ट है इंसान की लाइफ का, कि अंदर से कुछ चीज निकल जावे, फिर वो बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, दौड़ता नहीं, कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर खाक बन गया, और इसको जला देना तो ये सारा बदन वगैरह जल के खाक हो जावे, ये आखिर है। ओह, सारा दिन बैठा रहे, खाना पीना छूट गया, राजा ने सोचा इसकी शादी कर दो, शादी कर दी, बीवी आई, थोड़ा टाइम पलट गया, एक बच्चा भी हुआ, फिर एक दिन बाहर कहीं गया और कोई जानवर मरा हुआ देखा, वो चीज वापस रिवाइव हो गई, घर वापस आ गया, और इसी तरह से खाना पीना सब छूट गया। एक दिन रात को हल्के से कपड़े पहने और आधी रात के बाद बीवी को देखा, अपने बेटे को देखा, और महल छोड़ के चला गया, कभी वापस नहीं आया। उसका नाम था गौतम बुद्ध। एक झाड़ के नीचे वड़ के झाड़ के नीचे बैठ गया, तप के अंदर बस इसी सोच में बैठ गया कि इंसान है क्या, क्या चीज अंदर की बाहर निकल जाती कि फिर वो उठता ही नहीं। वो अंदर की इसी चीज को ढूंढते 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 आखिर एक दिन उसको मिल गई, उसको ज्ञान हुआ, उसको की समझ आई क्या था अंदर के निकल जावे तो कुछ नहीं रहता। ए मोमिनो, हमारे जन्म की बाबत कभी सोची जाए, मां के पेट में एक छोटा सा स्पर्म रहवे, मां के लहू से वो बढ़ता रहवे, एक बच्चा बन जाए, ये बच्चा बाहर आवे, आस्ते आस्ते जवान बन जाए, दौड़े खाए पिए मौजे, बूढ़ा बन जाए, झुक जावे, नजर वीक हो जावे, कान सुनते नहीं, बदन कांपता है, और एक दिन फूंक निकल गई, हवा निकल गई, खत्म हो गई। ये अंजाम है। और इस दो चार दिन की जिंदगी के लिए मौला फरमाया कि 100 बरस की जिंदगी एटर्निटी में 1 मिनट के बराबर है। 100 बरस लगी जीवन बंदे आखर मरना होई 100 बरस जियो। आजकल आदर में हम दुआ देते हैं 110 बरस जियो, शायद 2-5 बरस के बाद सब कह देंगे 120 बरस जियो, क्योंकि साइंटिस्ट पीछे लगे हैं कि आदमी 150 बरस जीना ही चाहिए। और आज हालत यह है कि आदमी नॉर्मली 90-100 बरस जीता है, कोई बड़ी दूर की बात नहीं, 150 बरस जिएगा। हमारे हुंजा के अंदर बहुत से इस्माइली हैं कि जो 150 बरस के हैं, तो भले पीछे कहते हैं 100 बरस जिए, आखिर मरना तो है ना, तो फिर क्या होगा, हमको आग में नहीं डालेंगे, मिट्टी में दफन कर देंगे। लेकिन देखना सोचना समझना ये है कि चलो भाई 100 बरस हुए, अंदर से हवा निकल गई, बॉडी को जफन कर दिया, लेकिन फिर हुआ क्या, वो हवा का क्या हुआ। इस हवा को हम जीव कहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह खुदा ताला ने हमारे लिए इंतजाम किए है, आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, मौज मजा करने से, मुर्गियां खाने से, बिंदुका का गुड़ खाने से पता नहीं। लेकिन ए मोमिनो, पीर कहते हैं कि जब ये मां के पेट में बच्चा रहता है उसमें जीव है, तभी तो वो बड़ा होता है। लेकिन जब वो 16 अठवाड़ी होते हैं ना, 4 महीने होते हैं, तो उसमें रूह उतरती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा उतरती, जीव है उसके अंदर। और जिस दिन आत्मा, जिस दिन या जिस वक्त उस पेट के बच्चे के अंदर आत्मा दाखिल होती है, तो हार्ट बीट शुरू होता है और मां को पता लगता है, क्योंकि जैसा ही फर्स्ट बीट होती है हार्ट की, तो मां को ऐसा शॉक लगता है और वो अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है, फील करती है। तो ये जो 4 महीने के बाद, 16 अठवाड़ी के बाद जो ऊपर से कोई चीज अंदर दाखिल होती है, वो उसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। रूह जो है वो नूर है, दुख सुख रूह को नहीं, हिसाब किताब रूह को नहीं, वो पाक है, खुदा ताला की तरफ से बख्शिश है। मगर रूह जो है वो इलेक्ट्रिक की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह एनर्जी है। इस रूह की एनर्जी ब्रेन की मारिफत जीव को मिलती है और जीव सारे शरीर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंसान जब ही भूल चूक करता है, गुनाह करता है, इबादत करता है, नेकी करता है, बदी करता है, वो सब लिखा जाता है, वो जीव का कारण है और जीव हार्ट में रहता है। जो रूह है वो ब्रेन में, इंटेलिजेंस में रहती है। जब इंसान की मौत आती है तो रूह तो फौरन निकल जाती है। इसको हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर प्राण पुरुष को अमर, प्राण का पुरुष, पुरुष कहते हैं मालिक को, प्राण कहते हैं जीव को, फोर्स ऑफ लाइफ। फिर कहते हैं कि जो प्राण का पुरुष है, मालिक जो है यानी आत्मा, वो अमर है, काया मरी मरी जाए। और ये काया है ये बदलती रहती है। जीव, एक जीव सैकड़ों जात के जीव अपने बदन लेता है। 84 लाख के इस फेरे के अंदर जीव मरता भी है, जन्मता भी है। सच पूछो तो जीव मरता नहीं, वो भी अमर है, लेकिन बदन, जब भी एक बदन छूट जाता है तो उसके आमाल के कारण से, मौला के हुक्म के हिसाब से उसको दूसरी बॉडी मिलती है। और जब दूसरी बॉडी मिलती है, इसी तरह से बचपना होता है, बड़ा होता है। हम इस्माइली 84 लाख के फेरे में से निकल के आज इस मुकाम पे आए हैं कि हिंदू जिस तरह मानते हैं ऐसा हम नहीं मानते। हम ये नहीं कहते, कभी मानते भी नहीं और है भी नहीं कि कोई इस्माइली गुजर जाए तो वापस वो गधा घोड़ा जानवर बने। हम इस चीज को नहीं मानते। इस्माइली है, गुजर गया, वो इस्माइली ही बनेगा, उसको इस्माइली मजहब में ही चांस मिलेगा। एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, 8 या 9 स्टैंडर्ड में है, फेल हो गया तो उसको वापस फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं डालेंगे, सेम क्लास में रहेगा और रिपीट करेगा। ऐसा ही हमको हमारे नेक्स्ट जन्म में वो चीजें रिपीट करनी है कि जो हम भूल गए या हमने नहीं की। ऐसे लोग कि जो छोटी सी बात के लिए अटक गए हैं, उनको दूसरे जन्म की जरूरत नहीं है। ए मोमिनो, हमारे मजहब के अंदर मरहूम को जितनी दुआएं मिलती हैं सारी दुनिया के किसी मजहब में नहीं। सलवात का सवाब मिलता है, छांटा मिलता है, जमात की दुआ मिलती है, जमात खाने में उसके लिए दुआएं आती हैं, उसके लिए मेहमानियां आती हैं और 40 रोज तक उसके लिए हम लोग दुआएं मांगते रहते हैं। हमारे मजहब में ये हुक्म किया गया है कि हम मरहूम के पीछे 40 रोज तक दुआ वगैरह, मेहमानी या तस्बीह उसके लिए करते रहे। मैं आपको याद कराऊं, अभी थोड़े टाइम पहले हमारी माता उम हबीबा गुजर गए तो हज़रत इमाम ने तालीका भेजा कि 40 रोज तक उसके लिए दुआ मांगो। 62 के अंदर प्रिंस अली खान गुजर गए तो भी मौला ने तालीका भेजा तो हमने 40 रोज तक उसके लिए जमातों के अंदर दुआ मांगी। मगर हमारी जमात के अंदर जब भी कोई गुजर जाता है तो 10वें तक तो करते हैं, बाद में अगर मानो के 14वें 15वें रोज कोई खुशहाली आ गई या चादरात आ गई तो बड़ी बड़ी बूढ़ियां उनको बोलती है ना, अंशारी में जो पानी भेजी दो, 40वें का पानी डाल दो, ये बराबर नहीं है। उस मरहूम को नुकसान मत दो, कभी खुशहाली भी बीच में आ गई तो क्या है, उसमें कोई गमी की बात नहीं है। 40 दिन तक मरहूम को दुआ पहुंचाओ और उसके लिए तस्बीह भी निकालो, और कभी जिंदगी भर अपने माता पिता की रूहानी सवाब के लिए एक सलवात की तस्बीह निकालो तो क्या बुरा है, उनके लिए अच्छा है। मरहूम के लिए सलवात की तस्बीह सबसे आला चीज है, उसको याद करो और उसकी भी दुआएं दो। तो मोमिनों, जब हम गुजर जाते हैं तो हमारे अंदर एक और भी बॉडी है। मुझे याद आया, दो तीन जगह मैं कह चुका हूं लेकिन आपको पता लगे, 1946 में मार्च के महीने में डायमंड जुबली थी। ये वाकया कुछ फरवरी महीने की आखिरी तारीखों में था, या 26 या 25 थी। मौलावाड़ी के अंदर आए, मंडप बहुत बड़ा था, नस्मित रोड के ऊपर जो वाड़ी है मजगौन के पीछे, अभी तो वहां हॉस्पिटल हो गया। वाड़ी में आगा शाह हसन अली, आगा अली शाह, आगा सुल्तान मोहम्मद शाह, ये उधर रहा करते थे और जहां रहते थे आज वहां हॉस्पिटल मौला ने बना दी। रात को 8:30 बजे बेगम साहबा माता उम्मे हुबूर को लेके मौला आए। 70,000 आदमी बैठा था। मौला आए, बहुत खुश थे। हसन अली नांदी वाला दरखाने में नांदी करता था, वो फरमान सुनाता था। मौला ने फरमाया दुआ सिस्तो, तो हसन अली नांदी वाला ने माइक के ऊपर, हजरत मौलाना धनी सलामत दत्तार फरमाइंता फरमाइंता खाना वादा, और मौला सर दिलावे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 दफा दुआ सिस्ती। फिर फरमाया, रसूलुल्लाह फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, तो जो बूढ़े बूढ़े से ना मुंह नीचे हो गया, समझा कोई नहीं, जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सेकेंड टाइम रिपीट कराया और फिर माता सलामत के साथ फ्रेंच में बात करके दोनों हंसने लगे। उसको बोला, फिर बोला जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे, तो बूढ़े बूढ़े बेचारे थे खामोश हो गए। फिर मौला फरमाया, देखो रसूलुल्लाह फरमाया है कि जन्नत में सब जवान जाएंगे, जो बूढ़े होंगे उनको भी जवान शरीर मिलेगा और इस तरह से जाएंगे। अब सब खुश हो गए। हम जब ही पैदा होते हैं, हमारे शरीर, हमारे बॉडी के अंदर एक और शरीर है जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। वो एक रूहानी बॉडी है और इस बॉडी के साथ बढ़ती रहती है। छोकरियां लड़कियां होंगे तो 16-18 साल की उम्र तक उनकी बॉडी स्टॉप हो जाती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, कभी कभी होता है ऐसा। 22-24 बरस का, 23 बरस का लड़का होवे तो वो मैच्योर हो जाता है, फिर ज्यादा बढ़ता नहीं। अब ये बॉडी आस्ते आस्ते 30-35-40-50 के आस्ते आस्ते बूढ़ी हो रही, कमजोर हो रही, मगर वो जो अंदर की बॉडी है वो जवान रहती है। जब हम मरते हैं तो वो जवान बॉडी बाहर निकलती है, उसमें हमारा जीव है, जो आत्मा तो निकल गई, हमारा ब्रेन है जिसको मन कहते हैं। तो मन और जीव उस बॉडी में होते हैं। उस बॉडी के अंदर जितने भी शरीर के लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, अवयवियों कहते हैं हम गुजराती में, वो सब रूहानी हालत में मौजूद है। अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर लंगड़ा हो गया तो उसकी एस्ट्रल बॉडी भी लंगड़ी हो जाती है। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है इसका अकाउंट होता है, हिसाब किताब होता है। कब्र के अंदर जब ही सुला देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो ये एस्ट्रल बॉडी वापस कब्र में इस बॉडी में दाखिल होती है और उसका हिसाब किताब होता है। और ये हिसाब किताब इसके ऊपर से उसको दर्जा मिलता है, कहाँ जावे क्या करे मौला का हुक्म होता है उसके लिए। लेकिन ये हिसाब किताब जो मौत के वक्त होता है हर एक के साथ, कोई छूटने वाला नहीं। और इमाम जमान के बहुत से फरमानों के अंदर ये चीज भी है कि तुम्हारा अकाउंट लिया जाएगा। और हमारे गिनान तो भरे पड़े हैं इस बात के लिए कि हिसाब किताब लिया जाएगा। लून पानी ना साहेब, लून कहते हैं नमक को, लून पानी ना साहेब लेखा ले से तेरे किम करी उतर दिया देशो जुगे सर सृष्ट गुर बिना मुगति न हो। ये लून पानी का मोला लेखा लेगा कितना नमक खाया, मतलब कहने का ये है कि छोटी छोटी चीज का हिसाब किया। पुराने शरीफ में अल्लाह कहता है कि राई के दाने जितनी भी तुमने नेकी की है बर्बाद नहीं होगी, और राई के दाने जितना गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हमारे अंदर जागृति पैदा होती है, और जागृति पैदा ये होती है कि मुझे जाना है तो मैं उधर के लिए कुछ करूं। ये चीज हमको हमारा मजहब समझा के तो कहता है सुबह उठो 3 बजे, बैतुल ख्याल की बंदगी करो, दिन भर आमाल अच्छे करो, किसी का खाओ मत, किसी पे जुल्म ना करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, किसी के ऊपर आरोप न लगाओ, अपनी बदियों बुराइयों को दूर कर दो तो तुम्हारा जो जीव है ना वो हल्का हो जावे, प्योर और पाक बने। ये हमारा मजहब है जो हमें सिखाता है। और ऐ मोमिनों, जो आदमी गफलत में है, सोया हुआ है, मेंटल कंडीशन में, उसको बहुत नुकसान होगा। सैयदा इमाम बेगम कहती है, और ऐसे बहुत से गिनानों में है, हमारे पीरों ने हमको जागृत किया, उठो जागो, उठ जाग मन मेरा, तू काहे को सोता है, मन का जन्म रतन है, सो क्यों गफलत में खोता है, उठ जाग। कैसे अच्छे गिनान, कैसे अच्छे गिनान है इल्म उसमें। और गिनान बोलने से इंसान के अंदर आध्यात्मिक अवेकनिंग पैदा होती है। गिनान बोला करो, गिनान समझा करो। जागो जागो भाईड़ा, एम शरण विहानी, उठो। क्यों इस तरह से रात गुजार रहे हो? सुबह उठ के मौला को याद करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहदतर फरमाया, दिन में किसी एक वक्त तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिले, अगर हर रोज नहीं बने तो अठवाड़िए वीक में एक दिन। बोला कहते हैं कि हफ्ते में भी एक दिन नहीं मिले तो महीने में जरूर एक दिन कोने में बैठ के अपने घर में सोचो। सुल्तान से फरमाया, सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरी लाइफ अच्छी है, क्या मैं गुनाह करता हूं, और अगर गुनाह करते हैं तो हर आदमी को मालूम है कि मैं क्या गुनाह करता हूं। मौला फरमाते हैं कि सोचो कि जो तुम करते हो क्या वो सच है, और अपने आप को इस बात के लिए जगाओ, दिल करो। दुनिया में ऐश आराम, खाना पीना, इसी में जिंदगी गुजारना, ये हमारा मजहब नहीं है। हमको हमारे इमामों ने हमारे पीरों ने मना नहीं किया कि अच्छा खाना ना खाओ, हमको मना नहीं किया कि अच्छे मकान में न रहो, हमें मना नहीं किया कि अच्छे कपड़े न पहनो, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि अपना दिल दुनिया में मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास 2 मिलियन का बंगला है तो उसके ऊपर फखर मत करो, उसके ऊपर फखर मत करो। लाहौर का स्टेशन यही है, अभी थोड़ा चेंजेस वगैरह हो गए। मेरे अब्बा की आंख से देखी हुई ये बात है, 1911-12 के अंदर लाहौर के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार को बहुत मुसलमानों ने मान मर्तबा दिया, बोला कि गाड़ी के घोड़े उतार दिए और लोगों ने घोड़े खींचे, गाड़ी खींची मौला ने, मौला की। तो उस वक्त हम लोग अमृतसर रहते थे, मेरे बाप मेरे दादा लाहौर देखने गए थे, तो उस वक्त वापस आते थे, एक वाकया बना। मेरे अब्बा कहते हैं रात का वक्त था, 10-1 बजे थे, लाहौर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से लोग थे, एक बड़ी घोड़ा गाड़ी में से कोई नवाब उतरा, खूबसूरत बीवी उसकी दर दागीने से लदी, छनमन छनमन करते हुए ये हस्बैंड के साथ ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और उसके पीछे नौकर जाकर खड़े रहे। गाड़ी को देरी थी तो ये नवाब और उसकी बेगम ऐसा टहलने लगे, उधर जावे फिर वापस आवे। दीवार के साथ लगा हुआ एक फकीर बैठा था, छोटी सी गुड़गुड़ी थी हुक्का हाथ कितनी, तो वो उठाए हुए था बगल में और हुक्का पीता था, गंदा मंदा बांस आवे कपड़े से ऊपर लियाफ वगैरह लदा हुआ। उसने देखा कि ऐसा मालदार आदमी है तो शायद कुछ मुट्ठी भर के कोई बड़ी रकम देगा, तो नजदीक आया, आजिजी से पैसे मांगे और पीछे पीछे चलता रहा। अब क्या हुआ कि उसने एक सूटा लगाया गुड़गुड़ी का, अब जब वो हुक्का पीने लगा तो एक तनखा स्पार्क उड़ के वो बेगम की पछेड़ी के ऊपर गिरी और जलने लगी। नवाब तो जल्दी से और नौकर चाकर भागे, वो तो बुझ गई, लेकिन नवाब ने इस फकीर को जो एक हाथ मारा तो 10-15 फुट तक ये रगड़ता रगड़ता उधर चला गया, हुक्का उधर चला गया, कपड़े इधर चले गए, लोग सब खड़े देख रहे हैं। इसने उठा अपना सामान इकट्ठा किया, कोने में जाके बैठ गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। मेरे बाप कहते हैं हम सब लोग सैकड़ों आदमी से हैरान हो गए। ये वापस इसी तरह टहलने लगे, टहलने लगे। 5 या 7 मिनट हुए होंगे कि नवाब के पेट में दर्द शुरू हुआ, सहन न कर सका, जमीन पे बैठ गया, तड़पने लगा, जमीन के ऊपर ऐसे शाही कपड़े पहने हुए लेट गया। अब बेगम को इसकी वाइफ को पता लगा, समझ में आई कि उस फकीर को मेरे शोहर ने मारा है, उसकी बददुआ लगी, उसके पास गई, पांव को हाथ लगा, बाबा मेरे शोहर पर माफ। कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहा, आंखें बंद करके बैठा रहा, क्योंकि उसको एक तो बूढ़ा आदमी गरीब शख्स था, बहुत वीक था, और ये जवान इसने पठान की तरह मारा, उसको बहुत लगा। बाबा मेरे शोहर को माफ कर। जब ये बहुत रोई तो उसने हाथ उठाया, ऐ खुदाया तू इसको बख्श दे, वो अच्छा हो गया। कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा जल्दी मिल जाती है, कभी कभी देर से मिलती है। देर से क्यों मिलती है? अल्लाह कहता है कि तुम जब भी गुनाह करते हो तो मैं उसकी पनिशमेंट रोक रखता हूं, तुमने जो अच्छे काम किए हैं मैं उसकी पहले तुम्हें बख्शिश देता हूं अच्छे कामों की, फिर जब अच्छे कामों की बख्शिश हो जाती हैं तब मैं तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा देता हूं। इसलिए बहुत दफा गुनाह आज करो सजा 10 बरस के बाद भी मिलती है। ऐसा भी हुआ है कि आदमी मौत से 2-3 बरस पहले कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है तो दिनदारों उसको मौत के बाद भी सजा मिलती है। खुदा की सजा से हमें बहुत डरना चाहिए और इसलिए दुनिया से दिल उठा के धर्म में मजहब में दिल लगाओ कि एक दिन मरना है और कोई छुड़ा नहीं सकता मौत से, कोई नहीं। हमारा मजहब हमें बहुत दुनिया और दीन दोनों की इल्म देता है। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि बैंक अकाउंट की तरह जिसमें 3 कॉलम होते हैं, विदड्रॉवल, डिपॉजिट और बैलेंस। आपने 1000 रुपए अंदर डाले, डिपॉजिट में आए, बैलेंस 1000 हो गया, 2-4 दिन के बाद 10000 रुपए डाले, बैलेंस 1100 हो गया, 11000 हो गया, अब जितने निकाले हैं इतने घटता रहा। ऐसा ही कुछ नेकियां ऐसी हैं कि हमारे छोटे छोटे गुनाहों को वाइप आउट कर देती हैं, निकल जाती हैं। कुरान में शरीफ में ये लिखा हुआ है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, नेकियां छोटे मोटे गुनाहों को खा जाती हैं, यानी कि वो माइनस प्लस में आ जाती है। इसी तरह से कोई ऐसे गुनाह है कि हमारी छोटी छोटी नेकियां खा जाती हैं। इस तरह चलते 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 बड़ी नेकियां ऐसी हैं तो जो इंसान को मालदार बना देती हैं और उस आदमी को गुनाह भी करता है तो भी सजा नहीं मिलती। कभी कभी लोग पूछते हैं मिस्टर साहब, वो आदमी दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है, मिलियन बिलियन बनाए हैं, ये है वो है, मगर उसको पता नहीं कि उसने कुछ नेक काम भी किए हैं कि जिसके हाजिर इमाम पहले उसको इवज़ देता है। लेकिन जब भी नेकियों का इवज खत्म हो जाता है तो फिर उसको मार पड़ती है। और खुदा की मार के हजारों तरीके हैं, हजारों, एक नहीं दो नहीं, हजारों तरीके से खुदा हमको मार मारता है। और बड़े में बड़ी मार जो है ना, दिल का जलापा है, दिल जलता है और फिर उसके दिल में हसद पैदा होता है, हसद के दिल में, हासिद के दिल में आग जलती है, हासिद के दिल में आग जलती है। फिर सदर दिन माँ बाप कहते हैं, हम लोग गिनान तो पढ़ते हैं दीनदारों, लेकिन हमने गिनानों में कभी ध्यान ही नहीं दिया। अलफ निराले खालक राजा, इस गिनान में एक पाठ है, दोजख घट अंदर कुआं अगंदा, दोजख घट अंदर कुआं अगंदा, तिया शैतान केरा थामा जी। घट के अंदर दोजख की तरह, जिस तरह दोजख में अग्नि का एक कुआं है, फायर का एक वेल है, यानी अंदर फायर जलती है, तो घट के अंदर अग्नि का कुआं है, जलापा होता है। फिर माँ बाप कहते हैं ये उसके घट में दोजख है, वहां शैतान का वासा है, बद ख्याल करने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, خراب کام کرنے والا مرشد سے دور ہٹ جاوے، مولا کا مال کھا جاوے، دسوند کھا جاوے، ایسے سب کام کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اس کی سخاوت نیکیوں کا اس کو عوض مولا دیتا ہے، لیکن جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پیٹتا ہے، اندر جھلاپا ہوتا ہے اور کسی صورت میں چین نہیں، دل کی یہ اگن اس کی زندگی کو پریشان کر دیتی ہے۔ دل کے اندر جو یہ جھلاپا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی نہیں، وہ سزا اٹھانے ہی چاہیے۔ اسی لیے خدا تعالی کہتا ہے کہ میرے انصاف سے ڈرو، کیونکہ میرا انصاف کسی کو چھوڑے گا نہیں، کسی کو نہیں، چھوٹا بڑا، راجا مہاراجا کوئی بھی ہوگئے، اس کے سامنے کوئی نہیں۔ ڈرو خدا سے ڈرو۔ سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو، وہ دن کون سا؟ موت کا دن، کہ جب ہمارا حساب کتاب ہو۔ دن کو رے گھڑی پل کو، سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو۔ ہماری سجدہ امام بیگم نے 30 گنان بنائے، لیکن 9-10 گنان ملتے ہیں، باقی گنان ملتے نہیں، مگر اس کے سارے گنانوں میں روحانیت ہے۔ سیدہ امام بیگم کے جتنے بھی گنان ہیں، عاجزی ہے، وینتی ہے، روحانیت ہے۔ اے مولا، جیسے کہ سیدہ امام بیگم کہتی ہیں کہ میا مولا میرا ہاتھ پکڑنا، میرا ہاتھ پکڑنا، پکڑی لے جو مارو ہاتھ۔ حضر امام کی مہربانی، حضر امام کی دیا، اس کی آرزو کرو، جہاں تک بن سکے جماعت خانے آؤ۔ بڑی عمر کے لوگ یا کوئی کارن سر نہیں آ سکتے جماعت خانے، تو مومن ہو، صبح 4:15 اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے زمین پہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے عبادت کرو، کرسی پہ نہیں۔ زمین پہ بیٹھنا عاجزی ہے، کرسی پہ بیٹھنا بڑائی ہے، اور آج کل ہمارے جماعت خانوں کے اندر کرسی پہ بیٹھنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان میں آدھے ایسے ہیں کہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر کرسی پہ بیٹھتے آرام کے لیے بھول گئے ہیں کہ میں حضر امام کے دربار میں ہوں۔ زمین پہ بیٹھو، عاجزی کرو، آنکھوں میں سے آنسو نکالو مولا کے حضور میں عاجزی کرتے وقت۔ جتنا بن سکے ہمبل بنو۔ ہیومیلیشن جو ہے انگریزی زبان کا جو لفظ ہے، عاجزی ہے، عاجزی ہے۔ مولا سے ہمیشہ دعائیں مانگو۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، آدمی ذرا سا سکسیسفل ہوتا ہے، خاص طور کے بزنس میں، پیسے میں آوک بڑھ جاتی ہے، شان شوکت بڑھ جاتی ہے، تو مغز کا ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے، تو سمجھتے ہیں میں نے جیسا کوئی نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ مال دولت کے کارن سے، سکسس کے کارن سے جب ہمارے اندر جب یہ آتی ہے نا ہوں، تو اوپر مولا جو ہے نا، اس کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خدا اس کو ہیٹ کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑائی مولا کی کھانا ہے، خوراک ہے، تکبر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، پرائیڈ، یہ اس کا کھانا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں، بڑائی اس کی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، हमको तो एक मच्छर मार डाले। इसलिए अपने आप को हमेशा नीचा समझो, हम्बल समझो, कभी बड़ाई नहीं करना किसी भी चीज की, किसी भी चीज की, कि जिस चीज की आप बड़ाई करोगे थोड़े टाइम के बाद वही चीज दुश्मन बन जाएगी, वही चीज दुश्मन बन जाएगी, जलील कर देगी, ख्वार कर देगी, आदमी को मिलिया मेट कर देगी। मैं कभी कभी हिस्टोरियन होने के नाते हिस्ट्री की बातें करता हूं। इथियोपिया में राजा था हेली सिलासी बादशाह, उसको एम्परर कहते थे, लायन ऑफ जुडा, तुमाखी वाला आदमी, जुल्म करता था, खू हुआ और उसकी मिलिट्री ने उसको उतार दिया और उसके जुल्मों के कारण से, करने वाला खुदा है लेकिन कराता है, जो जनरल ने उसको उतारा उसने उसको जेल में डाला। जेल क्या थी? एक छोटी सी मिट्टी के बना हुआ रूम था, आजू बाजू में पहरे थे, भाग नहीं सकता था। उसको जलील करने के लिए एक बड़े प्लेट में, लंबी ट्रे में खाना देवे, एक साइड में ये खावे, दूसरे साइड में कुत्ता खावे, एक ही प्लेट में एम्परर हेली सेलासी लायन ऑफ जुडा खाना खाता है, इसी प्लेट में दूसरे किनारे पे कुत्ता खाता है। जब मैं पहली दफा मैंने ये चीज पढ़ी, मैं रो पड़ा। बादशाह आज कुत्ते के साथ खाता है। ए मौलो, मोमिनो, मौला से बहुत डरो, मौला के इंसाफ से, उसके जस्टिस से, उसके लॉ से बहुत डरो। हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। एक कुत्ते के साथ लड़ना हो तो आदमी लड़ नहीं सकता, कोई जंगली जानवर के साथ आदमी लड़ नहीं सकता। 10 इंच का सांप काटता है तो मर जाता है, ये छोटा सा भूं भूं करता हुआ जो मच्छर काटता है तो बुखार आ जाता है। क्या है आदमी, इंसान क्या है? एक मुट्ठी खाक, और उसमें इंसान की बड़ाइयां, इंसान के दबदबे, इंसान के ऐश आराम, लेना देना मेरे जैसा कोई नहीं है। हमारे पीर कहते हैं अपने दिल के अंदर ये सोचो, मौला की बड़ाई करो और कोई बड़ा नहीं, आपस में मोहब्बत रखो। मैं एक चीज और कहनी चाहता हूं और वो ये है कि मुझे कराची में आए हुए एक वीक लगभग हुआ, मैं 6 तारीख को इधर आया, आज 14 तारीख है और मैं आगे चलूं उसके पहले गई कल मौलाना आज़र इमाम की जन्म खुशहाली की आपको मुबारक। तो मुझे एक वीक हो गया है, मेरे पास इस एक वीक में 40 से 45 ऐसी बातें आई हैं कि मियां बीवी के झगड़े होते हैं, मोमन भाइयों में गुस्सा बहुत है, मैं 80 वर्ष से जानता हूं। ये जो गुस्सा है हमारे मजहब में हराम है, हमको हमारे पीरों ने मना किया है। ए मोमिनों, जो रूहानी आदमी होते हैं उनका घर संसार भी अच्छा होता है, मियां बीवी दोनों समझू होते हैं, इबादत करते हैं, बच्चे नेक फूल की तरह होते हैं, खुदा की रहमतें नियामतें उतरती हैं, भले करोड़पति नहीं बने लेकिन सुख की रोटी खाते हैं। सुख की रोटी खुदा की बड़ी नियामत है। घरों में लड़ाई झगड़े और इसमें मियां बीवी के झगड़े जो हैं वो औलाद को खराब कर देते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, मियां बीवी जब ही झगड़ते हैं तो बच्चे दोनों को देखते हैं। इन दोनों में से किसी एक को कोई एक बच्चा या दो बच्चे अपने दिल में समझ लेते हैं कि ये जुल्म करता है या बाप या माँ, और दिल में गांठ बांध लेते हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन छोटी उम्र से वो दो में से एक को हेट करते हैं, या बाप को हेट करते हैं या माँ को हेट करते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो वो हेटरेट जिंदगी भर रहती है। बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाती है कभी कभी माँ बाप के झगड़े में, उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनकी एजुकेशन खराब हो जाती है, मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 10, 11, 12 बरस के लड़का माँ बाप के झगड़े में पागल हो गया, तालीम एजुकेशन छोड़ दी, जमात करना छोड़ दिया, बस बैठा रहता, सोचता रहता, मेंटल कंडीशन पैदा हो जाती। अगरचे इस बच्चे ने अपना जो कुछ भी अमल किया है पास्ट लाइफ में उसके हिसाब से इसको सजा मिलती है, लेकिन इसका कारण कौन बना, माँ या बाप? ऐसे केसेस आज जमात में बहुत हो रहे हैं, कनाडा अमेरिका में भी, और कम नसीबी से पाकिस्तान में यह चीज घुस रही है। अपने घर की जिंदगी ठीक करो। कुछ कुछ औरतों का वाक है, मर्दों का ज्यादा है। वो औरतें के जो पढ़ना लिखना जानती है और खास तौर पे वो अमेरिका यूरोप वगैरह की साइड में झगड़ा करे तो आधी मिल्कत मिले उसे, तो जानबूझ के झगड़ा करने वाली अभी निकली हैं। मगर यहां यह चीज नहीं चलती है। यहां घर के अंदर बच्चों की खातिर और अपनी आकबत की खातिर, अपनी रूहानी जिंदगी की खातिर, अपने मजहब की खातिर सुख शांति से रहो, खाओ पियो, क्रोध गुस्सा न करो, नम कस कर लो। भाइयों भाइयों या बहने बहनों के अंदर भी कभी ऐसा होता है तो बच्चों को समझाओ, इग्नोर कर, सहन करो, झगड़ा ना करो, नम कस करो, प्रेम से रहो, भूल जाओ। ये चीजें रूहानियत में काम आती हैं और सुबह की इबादत में तो खास तौर पे काम आती हैं कि हमारा जो टेम्पर है वो कैसा है। मोमन तेजे धरती जेवा पीर कहते हैं, धरती जेवा ते, ये जो धरती है इसमें कुछ भी डालो धरती बेचारी सहन कर लेती है। गंदी चीज डालो, अच्छी चीज डालो, धरती सब कुछ सहन कर लेती है। मोमन ते धरती जेवा, शांत बनो, सहन शक्ति पैदा करो, पेशेंस पैदा करो, और दुनिया की जो चीजें हैं जो हमारे रूहानी साइड के विरुद्ध हैं, हमको हमारी रूहानियत के लिए खराब करती है, उन तमाम चीजों को, जैसे कि लालच है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, हसद है, इन चीजों से बचो, मन का सुख पाओ। मैं फिर दोहराता हूं, मैं बहुत दफा अपनी आवाजों में कहता हूं, ये मेरा ईडीएम है कि आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, और अपने मौला से मोहब्बत करो, अपने मौला की फरमान बरदारी करो, अपने मौला की बड़ाई करो, अपने मौला को याद करो, अपने मौला को हमेशा अपने बच्चों की तरफ भी ले जाओ, उन बच्चों के साथ बैठ के मौला की तारीफ करो, अपने मजहब को सिखाओ। इसी तरह से जमातों के अंदर भी सुख शांति से रहो, इमाम के बनाए हुए लीडरों का मान करो, इज्जत करो, इमाम ने उनको बड़ाई दी है, और इन सब के हुक्म में रहो, क्योंकि जो कुछ भी हमारे कायदे कानून में हजर इमाम ने लिखा है वो हजर इमाम ने लिखा है। इसलिए ऐ मोमिनो सुखी और आबाद रहो। बोला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करें, आफत बलाएं दूर करें, بدیوں برائیوں سے بچاوے، بلائے آفتیں بیماریاں تکلیفیں دفع کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، دسوندی بنائے، حقیقتی سمجھ دے وے، عبادت کا شوق دے وے، جماعت خانے کی حاضری میں آپ کو توفیق دے وے، گھروں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے وے، زمین اور آسمان کی تمام بلائے دور کرے، مولانا حضر امام آپ کو تندرستی دے وے، آپ کی آل اولاد کٹب قبیلے کو تندرستی سے رکھے، سکھ شانتی سے رکھے، روزی رزق میں برکت دے، آپ کی جاب میں آپ کے بیپار میں مولا آپ کو برکت دے وے، اور حق پہ رکھے، کوئی کا محتاج نہ کرے، مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کو آپ کی روحانی بخشش دے وے، سکھی آباد رہے، زندہ۔